राधा कृष्ण तथा वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोविंद गोपीनाथ तथा मदन मोहन वृंदावन के इन तीन अधिष्ठाता विग्रहों की जय हो। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन तथा यमुना की जय हो। कृष्ण और बलराम के बाल्य क्रीड़ा स्थल महावन की जय हो। जहां कृष्ण ने केशी राक्षस का वध किया था उस केशी घाट की जय हो। जहां कृष्ण ने अपनी मुरली से सब गोपियों को आकर्षित किया था उस वंशी वट की जय हो। व्रज के द्वादश वनों की जय हो। जहां नंद नंदन श्री कृष्ण ने सब लीलाएं की जय हो। कृष्ण के दिव्य माता पिता नंद और यशोदा की जय हो। राधा रानी और अनंग मंजरी के बड़े भाई श्रीदामा सहित सब गोप बालकों की जय हो। व्रज के सब गाय बछड़ों की जय हो। राधा जी के दिव्य माता पिता ऋषभानु और कीर्तिदा की जय हो। पौर्णमासी की जय हो। व्रज की युवा गोपियों की जय हो। पवित्र धाम के संरक्षणार्थ निवास करने वाले गोपीश्वर शिव की जय हो। कृष्ण के ब्राह्मण सखा मधुमंगल की जय हो। जहाँ बलराम जी ने रास रचाई थी उस राम घाट की जय हो। रोहिणी नंदन बलराम जी की जय हो। सब वृंदावन वासियों की जय हो। गर्भिले यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की जय हो। कालिया नाग की पत्नियों की जय हो। जिन्होंने भक्त के द्वारा गोविंद के चरणों को प्राप्त किया। श्री रास मंडल की जय हो। राधा और श्याम की जय हो। कृष्ण की लीलाओं में सबसे मनोरम रास लीला की जय हो। समस्त रसों के सार स्वरूप माधुर्य रस की जय हो। भगवान कृष्ण ने परकीय भाव में जिसका प्रचार किया उस व्रज धाम की जय हो। नित्यानंद प्रभु की संगिनी श्री जाह्नवी देवी के चरण कमलों का स्मरण कर यह दीन हीन कृष्ण दास नाम संकीर्तन कर रहे हैं।
नित्यानंद प्रभु के
संगिनी श्री जाह्नवी देवी के
जाह्नवा देवी ना वहाँ जरा लिख लो जाह्नवा देवी सब संतुष्ट हैं। ऐसे प्रसाद के बाद संतुष्टि होंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंलोकपदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीतपत्कमलं श्रीशिवं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वज्ञानाधारितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणेशवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। सब आ गए। अब रात को आप में से कौन यहाँ सोएंगे? प्रसाद हॉल में कौन डिसाइड करना है, निर्णय लेना है आज में। मंदिर में
कहाँ पर सो
सकते हैं? हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि कौन सा है? कोई पूछ रहे जंगल में सो सकते हैं क्या? इस तरह के जीवन में भी एक तरह का आनंद है। बहुत दूर होगा जाने की। हरे कृष्णा। तो हम लोग थे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के 135वें श्लोक में, जहाँ के रूप शिक्षा प्रारंभ होने ही वाली है। फिर से श्लोक का पाठ हम करेंगे। दश दिन प्रयाग रहिया
श्री
रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया
श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया
ए मतो दशदिन प्रयागे रहिया। इस तरह से महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे। श्री रूपे मतलब श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दिला, उन्होंने शिक्षा दिया, शक्ति संचारिया, और उनको जो आवश्यक शक्ति है वो प्रदान किया शिक्षाओं के द्वारा। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाना है, हमें यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, तो इसके लिए शक्ति चाहिए। जो शक्ति कृष्ण के द्वारा आती है, कृष्ण शक्ति बिना नाही प्रवर्तन, प्रवर्तन अर्थात प्रचार आदि के लिए कृष्ण को शक्ति देना आवश्यक है भक्त को, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो रूप गोस्वामी को प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने स्वयं शक्ति प्रदान की। रूप गोस्वामी ने प्रचार कैसे किया, किस तरह से किया?
ग्रंथों
की रचना करना, फिर तरह तरह के लोगों के साथ कृष्ण भक्ति और शास्त्रों के बारे में चर्चा करना, सेवा करना, भगवान की लीला स्थलों के को फिर से पुनः प्रकट कराना के लिए शक्ति चाहिए। ढूंढ निकालना कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला क्या कहाँ की थी, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, मंदिरों की स्थापना करना, तो बहुत सी चीज़ें की थी षड गोस्वामियों ने। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए शक्ति चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ भी लिखा है ना, कहाँ है नीचे जो चार्ट है, कृष्ण चेतना के आंदोलन का प्रसार। पहली बात, भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए बिना यह नहीं कर सकते। यदि हमें प्रचार करना है तो ये आवश्यक कि हमें भगवान की शक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी बात, यह शक्ति प्राप्त हुआ भक्त अपने आप को अत्यंत निम्न मानता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ वह कर रहा है वह केवल भगवत प्रेरणा से ही हो रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि वास्तव में किसी को प्रचार करने के लिए शक्ति मिली है भगवान कृष्ण से, तो वो नम्र होगा, क्योंकि वो जानेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ भले चमत्कार जैसे दिख पड़ रहा होगा, जैसे प्रभुपाद ने चमत्कार कराया ना सारे जगत में, कुछ भी नहीं था और 12 वर्षों में हजारों शिष्य, 108 मंदिर और कितने सारे किताबों का कुछ छापना, वितरण करना, इतना सारा प्रचार करना, प्रवचन आदि, चमत्कार ही था। परंतु प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि इसका श्रेय मुझे जाना चाहिए, मैं इतना महान हूँ इसलिए ऐसे हुआ। वो हमेशा नम्र रहते थे। वो जानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, कृष्ण भगवान या महाप्रभु की कृपा से हो रहा है, तो ऐसे उनकी भावना हुआ करते थे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसके बाद में एक प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न है? शक्ति पाए बिना प्रचार नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, कैसे आएगी शक्ति, हमें क्या करना चाहिए उस शक्ति को पाने के लिए? उसके लिए प्रभुपाद जी भी एक आगे कहते हैं, भक्ति में शक्ति को का प्राप्त करना, अच्छा, भक्ति द्वारा, वो काटा हुआ है ना,
भगवान द्वारा
शक्ति प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को योग्य पात्र बनना चाहिए। अभी तक सवाल का उत्तर नहीं आया, आधा उत्तर है कि हमें योग्य बनना चाहिए। यदि हमें शक्ति प्राप्त करना है तो पहले योग्य बनना चाहिए उस शक्ति को स्वीकार करने के लिए। जैसे जब हम करंट इस्तेमाल करते हैं किसी यंत्र के लिए, तो उस यंत्र को चलाने के लिए हो सकता है कि 110 या 220 वोल्ट की ज़रूरत हो और हमारे पास केवल एक 1.5 वोल्ट का या 8-10 वोल्ट का बैटरी है, तो उसे काम चलेगा? या हमारे पास 150 या समझ लीजिए 400 किलो वोल्ट का जो ऊपर बड़े तार में चलता है वो है, और हमें उसमें छोटा सा हमारा कुछ टेप रिकॉर्डर हमको चलाना है, डर उससे चलेगा? जलेगा ही नहीं, पूरा फूट जाएगा, हम भी साथ में निकल जाएंगे। तो उससे करंट यदि पाना है, इतना बड़ा करंट है, बिजली है उसमें तार में, उससे हमें यदि पाना है तो बहुत बीच में माध्यम चाहिए, बीच में कोई सही पात्र चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े यंत्र होते हैं जो कि ऊंचे वो करंट को नीचे लाके तो इस तरह से करते हैं कि हम उसको स्वीकार कर सके। तो हमारे पास वैसे यंत्र होने चाहिए। तो उसी तरह से भगवान की शक्ति तो अपार है, असीमित है, तो हम कितना शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उतना प्राप्त करने के लिए भी हमें कोई पात्रता चाहिए, कोई योग्यता चाहिए। तो वो योग्यता क्या है, इसकी बात
क्या है?
5। हाँ, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता, तो क्या है वो पात्रता? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। व्यक्ति को चाहिए कि वह 24 घंटे नित्य भगवान की प्रेममय सेवा में रत रहे, प्रामाणिकता से वह भगवत सेवा के लिए आतुर रहे। तो क्या योग्यता है भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रचार के लिए? भगवान की नित्य सेवा बड़े आतुरता से करते रहना चाहिए। दिन में 2 घंटा करेंगे तो चलेगा, तो फिर मिल जाएगा, है ना?
24 घंटे।
तो 4 कहना भूल गया, 2 देखा। तो दिन में 24 घंटे उपाधि करते हमें पूरा रत रहना चाहिए भगवान की सेवा में, और बड़े आतुरता से सेवा होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी के हर एक शब्द का महत्व है, सेवा, रत, 24 घंटे, आतुरता। तो सेवा करना चाहिए, परंतु कितने समय करना चाहिए? 24 घंटे करना चाहिए। और फिर आगे क्या? आतुरता से करना चाहिए, रत रहना चाहिए, मतलब मन, तन और वाणी सारी चीजें उसमें लगनी चाहिए, मग्न होना चाहिए हमें उसमें, व्यस्त रहना चाहिए उसमें, मतलब आधे हृदय से नहीं। तो ये है सेवा के लक्षण, जिसके द्वारा हमें वो शक्ति मिल सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा ये बताइए, क्या कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है? 24 घंटे सेवा क्या है, संभव है? भगवान की सेवा 24 घंटे हो सकती है? हो सकती है। कैसे रात को सोते नहीं हम?
इस तरह से कि हम आज सोए ताकि कल फिर से हम पूरी एनर्जी से सेवा कर सकें, नहीं तो नहीं सोएंगे तो कल नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जो हम सो रहे हैं वो भी एक सेवा है। तो ठीक है, मैं 10 घंटे सोऊंगा क्योंकि मुझे और भी अच्छी सेवा करनी है। चलेगा?
ज़्यादा सोए तो नेक्स्ट दूसरे दिन फिर से वो लेजीनेस आए।
तो अधिक अधिक भी सोना नहीं, कम भी नहीं सोना। तो इस तरह से भक्त जो भी करता है वो नींद भी लेता है, विश्राम भी करता है, तो वो कृष्ण की सेवा के लिए ही करता है। ताकि शरीर ऐसा स्वस्थ रहे कि वो अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सके। कभी कभी भगवान की सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए अन्य चीज़ों के लिए समय बिताना पड़ता है, हमें भोजन लेना पड़ता है। हाँ ये तो प्रसाद है, ये दूसरी बात है, लेकिन शरीर को देना पड़ता है आहार। एक बार एक व्यक्ति था, वो जंगल में पेड़ काट रहा था। अब काटते काटते जो है उसका जो यंत्र था सौ, वो काटने के लिए क्या बोलते हैं उसको, सौ करघस, करघस जिसे वो काटते ना लकड़ी, तो उसका धार अच्छा नहीं था और ये काटे जा रहा था और बहुत समय लग रहा था। एक एक इतना सा लकड़ी काटने के लिए वो बहुत समय उसको परिश्रम करना पड़ रहा था। तो एक दूसरा आदमी वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि ये तो किए जा रहा है, कुछ ज़्यादा अंदर ही नहीं जा रहा है। तो फिर वो आगे चला गया और फिर वापस जब वो कई घंटों के बाद आया तो उसने देखा कि अभी तक ये यही लगा हुआ है, ऐसे ही लगा। तो उसने देखा कि क्या चल रहा है, तो उसने बोला अरे तुम इसका धार क्यों नहीं करते, थोड़ा उसको काम को रोको और थोड़ा धार कर लो अच्छी तरह से। नहीं मेरे पास वो समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। समय खराब नहीं करना है, इसका तात्पर्य कौन देंगे इस छोटी सी कहानी का। हाँ थोड़ा जोर से,
हमारा जो ज्यादा से ज्यादा हमारा एनर्जी जो है तो वो काम करने के लिए नहीं, उसको करने के लिए जो भी वस्तु है उसको देने का, पहले उसको रेडी करके रखना है टूल। सो 10% समय में वो खर्च हो जाता था और वो सोचता था 90% एनर्जी मैं कट करने के लिए डालता हूँ, तो कट भी नहीं हो रहा। तो इसलिए पहले जो टूल था उसको अच्छा करना था, ज्यादा समय उसको देना है, कट करने के लिए बहुत कम समय लगता था।
बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि सेवा करने के लिए भी कई चीज़ें होती हैं, तैयारी करनी पड़ती है। यदि वो व्यक्ति बुद्धिमान रहता तो वो क्या करता, वो थोड़ा समय निकालता उस यंत्र को साफ धार लगाने के लिए, फिर धार वाला यंत्र हो जाता तो जल्दी से वो कट जाता, हो सकता आधे घंटे में कट जाता। हालांकि उसको धार करने के लिए भले आधा एक घंटा लग भी जाए, परंतु फिर काटने में बहुत आसान हो जाता था। तो पूरा समय कितना लग जाता धार करने के लिए और काटने के लिए, 2-3 घंटे हो जाते। लेकिन अभी ये इसने धार के लिए समय नहीं रखा, इसलिए केवल वो बिना धार वाले यंत्र से काटे जा रहे 4-5 घंटे काटे जा रहे, समय ज़्यादा बर्बाद हो गया। तो उसी तरह से हमें भी हमारी कृष्ण सेवा करने के लिए जो अनुकूल है, जो अच्छा है, वो कर लेना चाहिए। न केवल शरीर को आराम देना, आहार देना, जैसे हम बहुत कुछ सेवा करते हैं उसके लिए भौतिक शरीर की ताकत चाहिए, मन की तैयारी चाहिए और आध्यात्मिक चेतना, प्रेरणा और उत्साह भी चाहिए। इसके बिना हम सेवा नहीं कर सकते ना। शरीर में ताकत नहीं हो तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो शरीर को ताकत देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना आहार होना चाहिए शरीर में, तीसरा थोड़ा व्यायाम होना चाहिए, थोड़ा योगा, कुछ परिश्रम, कुछ कसरत, प्राणायाम, जैसे आप सब करते हैं रोज। तो ये शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छा है। फिर मन के लिए, मन के उत्साह आदि तैयारी के लिए क्या चाहिए, मन की तैयारी के लिए क्या चाहिए, अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। आप में से कितने भक्तों ने अनुभव किया है कि कभी किसी भक्त के साथ कुछ गलत बातें हो जाती है, कुछ कटु वचन हो जाते हैं तो उत्साह हमारा पूरा चले जाता है सेवा करने में। कितने भक्तों का अनुभव है, हाँ देखिए सबका अनुभव। तो अच्छे संबंध यदि हम बनाए रखें सबके साथ, और यदि हमें ये पता चले कि हमारे उत्साह का धार कैसे पक्का रखना है, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सेवा हमारी हो जाएगी। तो भक्तों के बीच में संबंध अच्छे रखने, हमारे मानसिक स्थिति को अच्छा रखना, सकारात्मक भाव, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना, इससे हमारा मन सही रहेगा। और साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा उत्साह कैसे मिले? श्रवण करने से, कीर्तन करने से, अध्ययन करने से। तो आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी, आध्यात्मिक उत्साह नहीं होगा, तो हम कैसे सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे? हम सोचेंगे अरे नहीं करना है, नहीं नहीं हम सेवा कर रहे हैं अभी, जप के लिए किसको समय है? कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं ना, तो जप नहीं करेंगे तो चलेगा? हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना, तो श्रवण क्यों करना चाहिए? ये भी तो सेवा ही है ना कृष्ण की, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे। या तो फिर पढ़ाई क्यों करना है, अभी इतना हमको सेवा करना है कृष्ण के लिए तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे सेवा करने का उत्साह कम हो जाएगा। और सेवा जिस चेतना में, जिस भावना में हम कर रहे हैं, वो भी कम होते जाएगा। दूसरी ओर वो धार करने के लिए कोई आदमी वो 10-12 घंटा धार करते ही बैठ गया, दिन भर धार ही करता है, लेकिन इसको इस्तेमाल ही नहीं करता, वो काटने के लिए फिर कोई फायदा हुआ नहीं। उसी तरह से ऐसा नहीं कि हम दिन भर कोई सेवा ही नहीं करें, तुम लोग सेवा करो, मैं बस पढ़ाई करूंगा और मैं जप करूंगा। वो हरिदास ठाकुर के लिए ठीक है, हम सब नहीं कर सकते ना, तो हमें सेवा भी करना चाहिए, तो दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो शरीर, मन, बुद्धि आदि, हमारी आत्मा भी तैयार होनी चाहिए सेवा के लिए, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, तो ये बहुत आवश्यक है। एक बार हमारी तैयारी हो गई फिर हम अच्छी तरह से कर पाएंगे सेवा। साथ साथ में जब कोई भी सेवा करते हैं तो वो सेवा करने के लिए भी बहुत सोच विचार करना पड़ता है। आजकल जो व्यवस्थापन क्षेत्र में जो बड़े विशेषज्ञ हैं ना, मैनेजमेंट वाले जो लोग, उनका कहना ये है कि आप कोई भी प्रकल्प करने जा रहे हो, जैसे समझ लो कि रथ यात्रा उत्सव है या जो भी है, उसके लिए 80% जो आपकी ताकत है और समय है वो उसके पहले, उत्सव के पहले प्लानिंग करने में, योजना बनाने में, सोचने में जाता है। फिर 20% जो है वो प्रत्यक्ष रथ यात्रा उत्सव मनाने में जाएगा, लेकिन इसके 80% दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे क्या क्या करना है, यात्रा कैसे होनी है, कौन सी तारीख में होना है, किस तरह से जाएगा, कौन अलग अलग सेवाएं करेगा, कौन सी सेवा होनी है, फिर पंडाल में कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे पंडाल को बिठाएंगे सब जगह, अभी जगह बदल गई है, अभी जगह कम है पिछली बार के हिसाब से तो कैसे करेंगे, भक्त कमी है कम है तो कहाँ से लाएंगे, बहुत कुछ सोच विचार करना पड़ता है। और फिर आखिर में जब रथ यात्रा आता है 2 दिन में हो जाता, लेकिन वो 2 दिन के लिए तैयारी कितने दिनों से करना पड़ता है। लेकिन हम सोचेंगे अरे 2 दिन की बात है ना, तो 2 दिन पहले ही कुछ कर लेंगे, नहीं होता है। सोचेंगे इतना समय कौन बर्बाद करेगा ये प्लानिंग करने के लिए, सोचने के लिए, ये सब क्या फायदा है, हम तो रथ यात्रा से मतलब है। तो धार वाला नहीं होगा तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा सब चीज। तो इसीलिए यहाँ ये जो बातें हैं, पहली बात कि 2400 घंटे सेवा में रहना चाहिए, दूसरी बात सेवा में मग्न रहना चाहिए, रत रहना चाहिए बल्कि, और तीसरी बात आतुर होना चाहिए। आतुरता का क्या मतलब है? ईगरनेस, उत्साह,
तैयारी,
हर समय उत्साही होना हमें करना है। अरे नहीं कौन करे, इसको बोझ यदि समझेंगे तो वो नहीं। उस दिन हम थोड़े भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, उस दिन जो हम यात्रा में गए थे, जो सेवा है वो हमारे लिए ना तो भोग है ना तो बोझ है, दोनों नहीं होना चाहिए। बोझ मतलब हम आतुर नहीं है सेवा के लिए, अरे क्या कितना बड़ा बोझ है, कौन करेगा इतना सब, अभी इतना सेवा मुझे दिया, उनको इतना सेवा नहीं है, वो आराम से बैठे हैं और मेरे कितना सेवा है, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मुझे सेवा करना पड़ रहा है, तो कितना बोझ है मेरे लिए। तो बोझ इसमें नहीं लग रहा कि हम कितना सेवा कर रहे हैं, बोझ इसमें लग रहा है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हमको उसमें बुरा लगता है, बल्कि हमारा लाभ है ना, हमें सेवा मिले तो हमें हमारे लिए अच्छा है ना, हम प्रगति और करेंगे ना भक्ति में। तो ये है उसको बोझ समझना, बोझ समझ के करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और हम उनका सत्कार करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार से वो व्यक्ति जान लेता है कि ये हम उनको बोझ समझते हैं, तो वो रहेगा ज्यादा समय तो रंग निकल जाएगा, परंतु जब वो देखेगा कि हम कितने आतुर हैं सेवा करने के लिए, तो फिर वो बड़े खुशी से रहेंगे वहां। दूसरी ओर सेवा का प्रयोग भोग के लिए भी नहीं करना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? सेवा भोज नहीं होना चाहिए स्पष्ट है, फिर सेवा भोग नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब?
सेवा करने के बाद प्रतिष्ठा मिलेगा तो उसको मैं भोगूंगा।
सेवा करने के बाद मुझे प्रतिष्ठा मिलेगा, किस तरह का प्रतिष्ठा मिल सकता है?
अच्छा सेवा करने के बाद लोग सराहना करेंगे,
क्या बोलेंगे,
बहुत अच्छा सेवा किया आपने, आपकी वजह से ये सब हुआ,
आपकी वजह से आपने ये सब किया। पर हमें क्या लगता है ये कानून के लिए अमृत मैंने किया, करता हम मान्य थे, तो ये एक तरह का भोग है, सेवा का भोग, प्रतिष्ठा प्राप्त करना कि अन्यों से प्रेरणा प्राप्त करना। परंतु यदि समझ लीजिए कि आपने सेवा अच्छी तरह से किया, हृदय से आतुरता से मग्न होकर किया, और हमने आकर कहा रंजनानंदन प्रभु बहुत अच्छा आपने आज प्रसाद बनाया, तो फिर क्या बोलना चाहिए?
भगवान की कृपा है,
भगवान की कृपा है। और कभी कभी यदि हृदय से कोई व्यक्ति हमारी सेवा को अप्रिशिएट कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है, उसको उस दृष्टि से लेना चाहिए। ऐसे में विष्णु 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 क्या बोल रहे हो, लग रहा है हृदय से लग रहा है कि और बोलो और बोलो, उन्होंने बोला जा रहे विष्णु ऐसा 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 घोर सब असत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबको प्रेरणा की आवश्यकता होती है, प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, तो हम कुछ करते हैं दो हृदय से आके दो अच्छे शब्द बोल देता है, हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो अच्छा हम कर धन्यवाद प्रभु, हम खुश थोड़े त्रुटि हो तो जरा क्षमा कर, हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ईमानदारी से कुछ बोल देना चाहिए हृदय से, है ना। परंतु कोई यदि कहने के लिए औपचारिकता के लिए कह रहा है अरे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, हम समझ लेते हैं ना वो हृदय से नहीं बोल रहा है, या तो कोई अति प्रशंसा करता है तो आप समझ जाते हैं अंजना नंदन प्रभु आपने ऐसा प्रसाद बनाया कि आज पृथ्वी के इतिहास में कभी ऐसा बना नहीं आज तक नहीं बनाया है, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं बन सकता, राधा रानी भी ऐसे नहीं बना सकते, ऐसा कोई बोलने लगेगा तो पता चलेगा कि कुछ निंदा है वो, अति प्रशंसा चोरी, अति भक्ति चोरी लक्षण, अति प्रशंसा ये निंदा का लक्षण है, मतलब कोई कुछ करना चाहता है ना, तो भोग मतलब अभी जैसे हम कुछ प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, और किस तरह से सेवा का भोग हो सकता है?
कुछ अन्य लाभ हो,
हाँ,
अन्य कुछ लाभ हो,
जैसे
हम प्रवचन देंगे तो कुछ दान देंगे,
हाँ, को कुछ दान देंगे, और फिर वो दान मिलेगा, फिर उस दान से हम कुछ खरीद लेंगे, मंदिर में बताएंगे नहीं खरीदेंगे और खरीदेंगे थोड़ा कुछ अपना कुछ ये आईपैड वाईपैड कुछ ना कुछ ले लेंगे, अच्छा मिलेगा हमें। ब्रह्मचारी के लिए क्या होना चाहिए? ब्रह्मचारी के लिए खुद का पैसा, खुद का धन, खुद का यंत्र आदि नहीं होना चाहिए, अपना मान के कुछ नहीं, अपना बैंक बैलेंस, अपना अपने नाम में सब चीजें ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी आता है आश्रम की सेवा, फिर आश्रम में सब निर्धारित किया जाएगा किसको क्या मिलना है नहीं मिलना है, ये है ब्रह्मचारी जीवन। अधिकार नहीं, किसी भी चीज का अधिकार, हक नहीं कि मैं हूं तो मुझे मिलना चाहिए। जो अधिकार के दृष्टि से देखता है फिर वो सेवा भाव नहीं होता। और किस तरह से, कई लोग हो सकते हैं, प्रभुपाद जी कड़ी निंदा करते थे उन भागवत कथाकारों का जो भागवत की कथा करते हैं जीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, और इसलिए फिर वो मनोरंजन के लिए कथा करते हैं, मनोरंजन ताकि लोगों को वो आकर्षित हो जाएं, भले उस पर कुछ वो तथ्य दे रहे हैं, कुछ इसमें कोई दर्शन हो। जैसे जब ये कथा बोलते हैं कभी भी ये नहीं बताएंगे कि संसार दुखालय में है, ऐसी चीजें जो सुनना आवश्यक है लोगों को वो नहीं बोलते, वही चीज बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको प्रसन्न करके उन मुझे कुछ लेना है। तो ये भी एक सेवा का भोग हो गया। और किस तरह से हम भोग कर सकते हैं सेवा का?
मुझे अच्छा लगता है करके सेवा करते हैं, बल्कि जो वरिष्ठ ने बताया है वो नहीं करते।
मुझे इसमें करने में कोई एक बौद्धिक आनंद या कोई दूसरी तरह का आनंद मिल रहा है, जबकि आवश्यक तो कहीं दूसरी जगह है, कुछ और सेवा है, परंतु मुझे लगता है कि इससे मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे ये सेवा करना चाहिए, जबकि आवश्यकता दूसरी है। हालांकि जो सेवा वितरण करने वाले हैं उनको ये देखना चाहिए कि हर एक भक्त को अपने अपने रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार सेवा करना चाहिए। तो सेवा के लिए दो चीज़ें हैं जो आवश्यक है, एक है कि हमारी अपनी प्रवृत्ति और रुचि सेवा के प्रति, हर एक का स्वभाव अलग रहता है ना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आदेश, शरणागति, कभी आश्रम में कभी मंदिर में कोई आवश्यकता हो सकती है सेवा के लिए, उस समय में नहीं कहना चाहिए कि हमें रुचि करना रुचि नहीं है इसमें, यदि आवश्यकता है तो कर लेना चाहिए, परंतु दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। यदि हम केवल शरणागति शरणागति पर जाएंगे और कहते हम शरणागत होना चाहिए और हम ऐसी सेवा करते रहेंगे जिसमें हमें बिल्कुल रुचि नहीं है, उत्साह नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लगता हमको, तो कब तक हम वो करते रहेंगे? दूसरी ओर यदि हम केवल ऐसी चीज करते रहेंगे जो हमें पसंद है तो शरणागति कब सीखेंगे? आप समझ रहे हैं? तो दोनों चीजों को ये होना चाहिए। यदि हम केवल शरणागति के ऊपर जोर देंगे, बोलेंगे ऐसे ही करना चाहिए, तो आदमी जाके टूट सकता है आगे। दूसरी ओर शरणागति के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे तो फिर वो स्वतंत्र भावना उसकी हो जाएगी, मुझे जो चाहिए वही अच्छा रहेगा मेरे लिए, जैसे मेरा मन कहे वही मैं करूंगा और दूसरों की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बीच का रास्ता होना चाहिए।
एग्जांपल
कोई उदाहरण इसके दे सकते हैं कोई, हमने अभी अभी जो कहा
जैसे मैं किचन में सेवा करता हूँ तो किचन में सेवा करना करते करते अगर मुझे पसंद आया और मैं करने लगूँ, लेकिन कभी कभी आवश्यकता ऐसी हो सकती है कि बाहर सेवा होने के बाद या कहीं और आवश्यकता पड़े, गेस्ट आए हैं या फिर कहीं और जाना है गौशाला में, तो उस समय पर सेवा होने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे जाना पड़ता है, तो रुचि अगर ना हो तो भी मैं जाके वो सेवा करूँगा तो शरणागति।
यदि एक भक्त की सेवा है कि उसको कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, किचन की सेवा बहुत अच्छी लगती है, तो वो कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है, बड़े जिम्मेदारी से कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो जो सेवा वितरण करने वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि उस भक्त को वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि वो भी खुश है और आश्रम की या मंदिर की सेवा भी अच्छी तरह से हो रही है। परंतु यदि समझ लो कि अभी रसोई घर में पर्याप्त व्यवस्था है सेवकों की और उस भक्त की आवश्यकता कहीं दूसरी जगह पड़ रही है, तो उस समय यदि वो भक्त कहे नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे यहीं पर रहना है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो फिर वो शरणागति कब सीखेगा? फिर वो सोचेगा कि मैं वही चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है, फिर जब कृष्ण को पसंद है वो कब मैं करूँगा। दूसरी ओर यदि किचन सेवा अच्छा लगता है लेकिन कभी भी किचन के पास में भी आने नहीं देते, 1 किलोमीटर दूर रहना किचन, पास में नहीं देखना भी नहीं किचन में, और जो सेवा पसंद नहीं है वही सेवा देते रहने, तो ये भी अच्छा नहीं, वो आदमी निराश हो जाएगा थोड़ा बहुत, अरे क्या है, कुछ संकोच संकोच सा रहेगा, तो उसको भी अपने प्रवृत्ति के अनुसार सेवा मिलना चाहिए। हाँ, तो दोनों चीज़ें होने चाहिए। तो अभी ये बात कौन समझाएंगे, अभी अभी जो चर्चा हुई? अच्छा, इसके पहले और कोई उदाहरण भोग के लिए, सेवा का भोग कैसे होना चाहिए और क्या क्या लाभ हम सेवा से प्राप्त कर सकते हैं?
सम्मान, सम्मान,
सम्मान वो आ गया, प्रतिष्ठा,
सुविधा,
सुविधा जैसे
गाड़ी,
गाड़ी फोन और
लैपटॉप
और सुविधाएं कितनी हो सकती है, तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, तो इनका यदि हम भोग करने चाहेंगे, आसक्त हो जाएंगे उनसे, छूट दी जाती है, ये भी कभी कभी सेवा का एक ये हो सकता है कि इस सेवा में हमको छूट बहुत मिलती है, जैसे पुजारी सेवा है उसमें छूट नहीं है, क्यों?
टाइम
उसी समय होना ही होना, भगवान के लिए देर नहीं कर सकते, जब जाना है तो जाना ही जाना है उधर, लेकिन दूसरी सेवाओं में हो सकता है कभी कभी छूट हो सकती है, तो यदि हम पुजारी सेवा कर रहे हमें लगे अरे छूट लें, तब नहीं हो सकता, तो हमें आदत यदि पड़ जाए कि पुजारी सेवा से दूसरी सेवा करके जहाँ थोड़ा आराम है, दबाव नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, अचानक पुजारी सेवा में जाएं, वाह समय आना ही पड़ेगा, रोज ऐसे करना पड़े, हो सकता है मन विरोध करेगा, अरे पहले कितना अच्छा था, हमारी सेवा का भोग कर रहे थे, क्यों? स्वतंत्र भावना था, हमें जब चाहे मन में किया हमने किया, ऐसे कोई ऊपर से दबाव नहीं था, अभी समय का दबाव है। तो वास्तव कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा के लिए, सेवा करने के लिए, किसी भी सेवा को करने के लिए भक्त को तैयार होना चाहिए, ये है शरणागति। साथ साथ सेवा को वितरण करने वालों को देखना चाहिए कि मंदिर या आश्रम की आवश्यकता के साथ साथ को देखते हुए निजी भक्त के निजी जो एक रुचि है, प्रवृत्ति है, उसको उसको भी देखना चाहिए। तो कभी कभी हो सकता है बिना उसके रुचि के सेवा से मिले, लेकिन कभी कभी मिलना भी चाहिए, ऐसे संतुलन संतुलित अवस्था में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो सेवा की बात की, आप में से कोई समझाना चाहेंगे इसको? अभी अपने शब्दों में आप बताएंगे, अभी अभी जो चर्चा हुई पिछले 10 मिनट में।
सेवा न तो
थोड़ा जोर से
सेवा न तो भोग के लिए करना चाहिए या भोज समझकर
नहीं भोज समझकर नहीं करना चाहिए।
तो पहले भोज करके समझने का चर्चा हुआ जिसमें हमने कहा कि अरे इतने घंटा भी सेवा करना पड़ेगा तो ये भोज की प्रवृत्ति
भोज
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 भोज भोज की प्रवृत्ति है तो सेवा भोग की प्रवृत्ति में कैसा किया जाता है। जब भी हम सेवा करेंगे तो सेवा के बाद पूजा लाभ प्रतिष्ठा अनेक चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम सोचेंगे जब वो कहेंगे प्रभु जी आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया और मेरा हृदय बदल गया तो मैं सोचूंगा इसका उद्धारक मैं ही हूँ। तो मैं जो भी प्रशंसा मिल रहा है उसको भोग रहा हूँ और अनेक सुविधाएं मिलती है जैसे हम कह रहे थे गाड़ी मोबाइल लैपटॉप आईपॉड तो जो भी लक्ष्मी या जो भी मिलता है उससे हम ये सब चीज़ें खरीदेंगे और हमारे सुविधा हमारे अनुकूल के लिए रखेंगे तो वो भी उचित नहीं है बल्कि आश्रम में रह के देना चाहिए और आश्रम अधिकारी जैसे भी निर्धार करते वो जो हमें मिलेगा उसको लेना चाहिए। और जब भोग की वृत्ति में रहते हैं तो दो बातें हमने चर्चा की। एक था कि हमारे जो इंक्लिनेशन प्रवृत्ति है उसको देखना और शरणागत भी होना। कभी कभी हमें ऐसा सेवा भी दी जाती है जिसमें हमारा प्रवृत्ति नहीं है लेकिन आश्रम के लिए वो आवश्यक है इसलिए उसको करना है और कभी कभी जो सेवा में हमारा प्रवृत्ति है वही हमें सेवा मिलता है जिससे हमें और प्रेरणा मिलता है और अच्छा सेवा करने से। तो दोनों तरह की सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए खास करके जब ब्रह्मचारी होते हैं तो हर सेवा करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए।
बहुत अच्छा। और ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो अपने आप को किसी चीज़ का हक हकदार नहीं समझे कि हक से मुझे ये मिलना चाहिए ये सुविधा मिलनी चाहिए। किसी एक दूसरे मंदिर में ये बहुत बड़ी समस्या हुई थी कि जो पुजारी विभाग में थे वहाँ जो भी राजभोग और जो भी महाप्रसाद होता था उनको दिया जाता था वो अपने लोगों को बांटते थे इनको वो चाहे तो बार बार आपस में उनमें मतभेद होने लगे थोड़े झगड़े भी होने लगे आपस में। और एक दिन मैं इस भोग का जो है थाली मैं लूँगा उसका ने वो लेंगे तो ऐसे उन्होंने आपस में बांट लिया था कि ये अपना अपना है इसका ये करोगे इसका वो करोगे। फिर वो अपने अपने गिनो चिने बाहर के रहने वाले लोगों को देते थे और वो फिर उनको कभी दान देते थे कभी कुछ प्रभु जी को उनको थोड़ा अच्छा लगता था तो अपने लोगों को तो अधिकार दूसरा कोई यदि आ जाए वहाँ उस समय तो उनको अच्छा नहीं लगता था दूसरों को कैसे देंगे ये हमारा अधिकार है हम ये सेवा करते हैं ये आरती करते हैं दो दो आरती ये करता है उसको ये महाप्रसाद की थाली मिलनी चाहिए। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है बहुत महत्वपूर्ण है कैसे भावना बदल सकती है कैसे भावना दूषित हो सकती है अपने आप को हक समझना इट इज़ माई राइट मुझे ये मैं पुजारी सेवा करता हूँ तो मुझे ये थाली मिलनी चाहिए क्योंकि मैं सुबह सुबह आता हूँ रोज इतनी सेवा करता हूँ दूसरे लोग कभी नाते नहीं आते उनका चल जाता है लेकिन मुझे रोज आना पड़ता है तो इसलिए मेरा ये अधिकार है मिलना चाहिए। तो इसके बारे में आप कोई कुछ टीका करना चाहेंगे सही है गलत है क्यों और कोई हाँ गलत है क्यों क्यों गलत है मान लो उसने बांटा भी नहीं अपने लिए चाहिए खुद खाना है वहाँ पे सर स्वार्थ है मुझे ही खाना है उसे ये वास्तव में बांटना चाहिए सब में बांटना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मचारी या किसी भी भक्त को अच्छे भक्त को अधिकार समझ के सेवा नहीं करनी चाहिए, कि सेवा के लाभ के प्रति अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। फिर वही हो जाता है ना, ये सकाम भक्ति हो जाती है। साधारण भौतिक जीवन में भी काम करते हुए कर्म योग में क्या होता है, मां फलेशु कदाचन, कि कर्मों के फल का भोक्ता या अधिकारी मैं नहीं हूं, तो फिर सेवा के जो फल है उसका अधिकारी मैं कैसे हो सकता हूं। तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है सोचने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जब हम इस भावना से सेवा करते हैं, 2400 घंटे करते हैं, मग्न होके करते हैं, आतुर होके करते हैं, तो फिर भगवान शक्ति देते हैं। और बार बार हम चर्चा एक बात की करते हैं, जो उपदेश अमृत में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हिंदी में बहुत अच्छा, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर होता है। तो हमारी मनोवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सेवा केवल करना उतना आवश्यक नहीं है, सेवा करने की भावना क्या है वो बहुत आवश्यक है। भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं या हमारी सेवा की भावना स्वीकार करते हैं? भावना स्वीकार करते हैं। बिना भावना के हमने सेवा किया, हो सकता है थोड़ा लाभ मिल सकता है, परंतु ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जब हम सही भावना से करते हैं, तो भगवान हमें और सेवा करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए, अद्भुत से अद्भुत सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति में शक्ति का प्राप्त करना किसी भी भौतिक पात्रता पर न निर्भर है और न उससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसका क्या मतलब हो सकता है?
भक्ति स्वतंत्र है, वो कुछ बारीक परिस्थिति पर निर्भर नहीं।
कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं आप?
तो कोई गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु एक शुद्ध भक्त थे, यानी कि सारे शास्त्रों के ज्ञान उनको था। इसका अर्थ है कि पढ़ाई लिखाई न किए बिना भी जो भौतिक उपलब्धि है उसके अलावा भी एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है, शास्त्र का ज्ञान उसको हो सकता
है और चमत्कार की सेवा कर सकता है। और कोई उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण?
प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं कोई बड़ा स्कॉलर या बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के आदेशों पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैं दुनिया भर प्रचार कर पाया, लेकिन अन्य उनके गुरु भाई बहुत विद्वान थे, परंतु वो इतना नहीं कर पाए जितना प्रभुपाद ने।
और साथ साथ प्रभुपाद कहने लगे, मैं बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों साथ बैठ के मैं उनको आमने सामने चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि तुम इसका उत्तर दो। मैंने कितना विज्ञान पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सब करने की क्षमता मुझमें कहाँ से आई? केवल ये भगवत कृपा है, भगवान की शक्ति है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, सही है ना? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जाके चुनौती दे, आमने सामने उनको रास्कल मुंह पे बुला देते थे और सामने वाला आदमी स्वीकार करना, वो चुप बैठता है, उसको स्वीकार करना है ना। तो ये शक्ति कहाँ से आई? भगवान, गुरु परंपरा के द्वारा, भगवान के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कितने सालों तक तैयारी की। अब हम बात कर रहे थे ना कि किसी सेवा के लिए तैयारी करना, प्रभुपाद जी को विदेश जाने के लिए कितने साल तैयारी करनी पड़ी?
40 साल।
भूले नहीं वो, उस समय परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने याद रखा और तैयारी करते रहे। वो साथ साथ में जब ट्रांसलेशन आदि का समय आया तो वृंदावन में रह के केवल लिखने लगे किताबें। तो ये इसका उदाहरण है कि कोई भौतिक इसमें बंधन नहीं है, कोई भौतिक पात्रता की आवश्यकता नहीं है, ना उससे बाधा उत्पन्न हो सकती है कि ये भौतिक योग्यता नहीं है, इसलिए मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। मान लो मैंने विश्वविद्यालय में जाके कोई बड़ी डिग्री नहीं प्राप्त कर ली है तो मैं भक्त कैसे बनूं? नहीं, भगवान ने कहाँ कहा है कि डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही मेरे धाम में आएगा, या मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती तो मैं भक्ति कैसे करूँगा? भगवान ने नहीं कहा कि संस्कृत जानने से ही तुम मेरे धाम में आ पाओगे। मैं अच्छा मधुर कीर्तन धुन से गा नहीं सकता हूँ, वो गाने की कला मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे जा सकता? भगवान नहीं कहते हैं कि केवल मीठा गाने से हम भगवान के धाम चले जाएंगे। ये तो सब भौतिक गुण है ना, किसी के पास हों और उनका वो प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इन गुणों का न होने से हम भगवान के पास नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई प्रश्न है?
हाँ। ये भक्ति में ये शक्ति प्राप्त करने की पात्रता है 24 घंटे रत रहना और आतुर रहना, लेकिन 24 घंटे रत रहना और आतुर रहने के लिए भी कृपा और शक्ति लगती है, तो एक दूसरे पर निर्भर है, शुरू कहाँ से होता है?
प्रयास से, हमारी इच्छा से। हमें अपने आप से उत्साह करना चाहिए, हमें सेवा करने की इच्छा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, थोड़ी इच्छा हमारी होती है तब जाके हमें सत्संग प्रदान किया जाता है भगवान की कृपा से। तो जिसके हृदय में थोड़ी इच्छा रहती है भगवान उसको ऊपर कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं?
भक्तों का
संग दे देते हैं, ये कृपा है। फिर आगे चल के उसे भक्तों के संग को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? भजन क्रिया करके, जो वो बोलते हैं उस आदेश, उन आदेशों का पालन करना चाहिए, सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए इत्यादि, फिर इससे और कृपा मिलती है, फिर ये बढ़ते जाता है। परंतु मूल हमारी प्रेरणा के ऊपर है, हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम कितना करना चाहते हैं। तो हमें इच्छा करनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। हमारी इच्छा की तीव्रता को देखकर भगवान और कृपा करेंगे, और इच्छा नहीं है तो फिर इच्छा के लिए इच्छा करनी चाहिए कि भगवान मुझे आप आपकी सेवा करने की इच्छा प्रदान कीजिए। अभी मुझे इच्छा नहीं है, प्रेरणा नहीं मिल रही है आपको सेवा करने के लिए, तो कृपया आप मुझे इच्छा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और कोई प्रश्न? हाँ।
प्रश्न शक्ति के बारे में संबंधित, भौतिक पात्रता पर निर्भर नहीं होता भगवान भक्ति में शक्ति प्राप्त करना, तो क्या ये इन चीजों पर निर्भर होता है? हमारे पुराने कर्म, पिछले जन्म के कर्म या पापों का बेड़ा, या फिर भगवद्गीता में कहते हैं भगवान ऐसा तंत्र कथम पापम, जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाते हम दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकते। यहाँ पर हम उसको समझ सकते हैं कि भक्ति में शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं?
वैसे ये दो अलग चीजें हैं, एक ओर पाप और पुण्य है, दूसरी ओर भक्ति है। हमने तीनों ही किए हैं पूर्व जन्मों में, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, भक्ति भी किया है, इसलिए आज हम भक्ति में हैं। तो भक्ति किया है इसलिए भक्ति में आते हैं इस जन्म में, परंतु भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए और इसमें दृढ़ होने के लिए हमारे जो पूर्वकृत पाप और पुण्य है, पाप है खासकर, पुण्य भी कभी कभी, वो बाधा इसलिए बन सकते हैं कि हमारी निष्ठा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि ये हमारे कि किए हुए पापों का भी हमें हैरान करते हैं पुरानी वृत्तियां। परंतु यदि हमारी भक्ति तीव्र रही तो फिर जितने भी पाप पुण्य आदि किए होंगे उन सब को नाकानी से पार करके भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि नारद मृगारी थे या वाल्मीकि थे, भक्ति की अग्नि इतनी प्रज्वलित होनी चाहिए कि वो कितने भी पाप रूपी ईंधन को जला सके, ये जरूरी है। तो येषां त्वन्तकृतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्बन्धु निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो ये दृढ़ व्रत से भक्ति करने में हमारे पाप पुण्य क्षीण होने चाहिए, लेकिन वो भक्ति करने से अपने आप हो जाता है यदि हम तीव्रता से करें। तो हम कितने भक्ति के पद्धति के आश्रित हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि हम नियमों का पालन सही किया है उत्साह से, जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं, तो निश्चित ही वो सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी।
इसी संबंध में प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर ये दुष्कृतन और सुकृतन यही बाधा आते हैं जो भक्ति में दृढ़ता नहीं लाते हैं, तो इसके संबंध में। और दूसरा कि भगवद्गीता में भगवान बताते हैं जब सर्वधर्मान परित्यज्य वहाँ एकम शरणम व्रज, तभी वो बोलते हैं कि जो मैंने पिछले बोला था ये शब्द उसका भी जरूरत नहीं, फिर भी आप वो ऐसे बोलते हैं। तो
जब शरणागत हो जाते हैं फिर भगवान सब ले लेते हैं, हमारे पाप आप सब ले लेते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं। और ऐसे बताया जाता है कि भक्ति के अलग अलग स्तरों में हमारे अलग अलग जो अनर्थ हैं वो नष्ट होते रहते हैं, एक साथ नहीं होते। जितनी हमारी प्रगति हुई है उस ऊंचे स्तर में थोड़े थोड़े अनर्थ नष्ट होते जाते होते जाते होते जाते। अमुक प्रकार का अनर्थ यहाँ नष्ट होगा, दूसरे प्रकार का अनर्थ यहाँ नष्ट होगा, और एक प्रकार का अनर्थ यहाँ नष्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ है पहुँचे नहीं है इसलिए वो अभी तक है, लेकिन जब हमारी भक्ति यहाँ तक पहुँचेगी ये भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे है तो क्रमशः ये चलते रहता है, इसलिए हम सुबह को क्या बोलते हैं भागवत श्रवण के बारे में, इसका क्या मतलब है
हो जाते हैं भागवत सेवा करने से, सारे नहीं सारे
प्राय हो जाते, संपूर्ण नहीं हो जाते। और किस तरह की भक्ति आती है,
नैष्ठिकी
भक्ति, निष्ठावान भक्ति। तो निष्ठावान भक्ति में भी सारे अनर्थ खत्म नहीं हो रहे, वो आगे चल के धीरे धीरे आगे चल के प्रेम भक्ति में ही सब खत्म हो जाए। निष्ठावान भक्ति और इसके थोड़े आगे जाने से पाप आदि के सब खत्म हो जाते, फिर जो भाव भक्ति में भी जो रहते हैं वो अपराध के सब फल रहते हैं, वैष्णव अपराध ये अपराध वो अपराध जो है ना उसके चीजें रह जाते हैं, वो अंत तक रहते हैं।
महाराज हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा भक्ति में कभी सेवा में कभी उत्साह आता है कभी बहुत निरुत्साह हो जाता है, तो हम लगता है कि हमें भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं फिर उत्साह आने के बाद, कभी निरुत्साह आने के बाद कभी हम बहुत जल्दी हमारा स्थिति
ढीला
हो जाता है, और ऐसा स्थिति में हम नियंत्रण को एक खोने का बहुत,
इसलिए मन को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। आप ऐसे बात करते हैं ना, मन को ज्यादा कीमत नहीं देनी चाहिए। मन बहुत कहता है, क्या क्या नहीं कहता मन रोज करता है। यदि समझिए आप एक व्यक्ति के साथ में रहते हैं वो 24 घंटे बात करता है, एक भी क्षण चुप नहीं होता है। समझिए यदि कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका संग आपके पास को हमेशा लेना पड़ता है, एक क्षण भी बात करना छोड़ता नहीं है, तो आपकी क्या दशा होगी? कभी अच्छी बातें करता है, कभी बकवास करता है, कभी, लेकिन बात करते रहता है, तो मन हमारा है ऐसे 24 घंटे बात करते रहता है, करते है, कुछ ना कुछ। आजकल के मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने कुछ अपने आविष्कार से ये निष्कर्ष दिया है कि एक साधारण आदमी एक दिन में उसके मन में 80,000 विचार आते हैं। विचार आना मतलब मन का बोलना, मन बोल रहा है मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे जाना है, 80,000 विचार
दिन में।
अभी 80,000 में दिन में, एक दिन में। अच्छा, अभी 24 घंटे दिन में, उसमें से 6-7 घंटे नींद में जाते हैं, फिर भी चलो सोच लेते कि मन में भी नींद में भी कुछ सपने अपने आते हैं, तो 80,000 और 24 कितने होते हैं, तो एक घंटे में कितने हुए?
3,000 कुछ,
80,000 और 24 घंटे
3,333
समझ लीजिए, 3,000 एक घंटे में 3,000 विचार आते हैं, एक मिनट में
50
एक मिनट में 50, तो एक क्षण में एक विचार के बराबर, हर एक क्षण में एक पट 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 कभी तो आप जितने भी सहनशील होंगे, जितने भी सहनशील आदमी है, 24 घंटे व्यक्ति बड़बड़ता रहेगा साथ में ना, एक ना एक दिन आएगा ना आप उसको चुप बोलेंगे ना, चुप बैठो बोलेंगे ना उसको, एक ना एक दिन इतना सहन करेंगे। तो उसी तरह से हमें भी सोचने चाहिए, समय आएगा मन को क्या बोलना चाहिए, चुप बैठो। ये मन बहुत हैरान करता है, ऐसा करो ऐसा करो, ये करो वो करो, इसलिए मन की बात नहीं सुनकर हमें किसकी बात सुननी चाहिए? गुरु साधु शास्त्र, हमारी बुद्धि को इससे पोषित करना चाहिए, नरिशमेंट वहां से मिलना चाहिए। ठीक है,
बता रहे थे ये निग्लेक्ट बोलते हैं, वो
मन की उपेक्षा करनी चाहिए, इंडिफरेंट अब बोल रहा है।
और महाराज जो ये थॉट्स भी जो आते हैं, ये भी हमारे पिछले कर्मों के अनुसार आते हैं।
हाँ, पिछले कर्मों के अनुसार आते हैं,
तो इनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअली, हाउ कैन वी
कृष्ण में केंद्रित करके, तो जैसे जैसे स्मरण किस चीज का होगा, जो हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उन्हीं का स्मरण करेंगे ना, तो इन चीजों में ज्यादा लगे रहने से मन भी अपने आप कृष्ण का स्मरण करता रहेगा। हाँ
महाराज, ये प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार तो हम कार्य कर लेते हैं, लेकिन आदेश जब आता है बहुत कठिन होता है, तो कैसे करें?
कर लेना चाहिए। अभी ब्रजभवन प्रभु सर्विस अथॉरिटी रुचि के हिसाब नहीं, सब भक्त समझदार है, सब समझते हैं कि चलो कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो सब सहयोग करते हैं, है ना, लेकिन जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि दोनों का संतुलन होना चाहिए, शरणागति आदेशों के प्रति, साथ साथ हमारे प्रवृत्ति के अनुसार रुचि के अनुसार सेवा, दोनों चीजें हों तो आदमी लंबे समय तक टिक सकता है भक्ति में। ठीक है,
अगर किसी को रुचि नहीं है कोई सेवा में और बहुत देर से कर रहे हो, शरणागति की वजह से, और शरणागति की वजह से ब्रेकडाउन हो जाते हैं उसका, क्या करना चाहिए?
इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके टूटने के पहले उसको रुचि के अनुसार उसको कर लेना चाहिए, या तो उसकी परिपक्वता उतनी नहीं है अभी तक कि वो शरणागत होके अपनी सेवा करते रहे, लेकिन हम इंसान हैं, हर एक की कोई ना कोई सीमा हो सकती है, तो उसके पहले उसको कोई दूसरा सेवा दे देना चाहिए। ठीक है,
प्रवृत्ति के अनुसार मेरा वातावरण नहीं है,
प्रवृत्ति के अनुसार
वातावरण नहीं है,
नहीं है
तो तब मुझे घुटन लगता है।
तो उसको वातावरण ही नहीं है तो उसको वातावरण बनाना चाहिए, क्यों नहीं है? हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहेंगे वातावरण को, सही वातावरण का निर्माण करने के लिए? हम उस वातावरण को क्यों नहीं बनाएं जिस वातावरण को हम देखना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी जो अभी बहुत प्रसिद्ध है सारी दुनिया में, को यूएस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस बात को कहा, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, जो तुम परिवर्तन देखना चाहते हो ना तुम वो बनो। जैसे हम कहते हैं अरे भक्त में ऐसे लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे गलत काम क्यों करते हैं, या भक्त लोग मुझे प्रेम क्यों नहीं देते हैं, यदि ऐसे कोई शिकायत यदि हो किसी को, तो कहना चाहिए तुम प्रेम देना सीखो सबको, सब हो जाएगा। कोई शिकायत करेगा अरे भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं, तो हम व्यवहार ठीक से करके करते रहेंगे, अन्य लोग करें ना करें हम करेंगे ठीक से व्यवहार। तो जो भी परिवर्तन हम देखना चाहते हैं हमारे वातावरण में, वो हमें करना चाहिए। केवल यदि हम दूसरों पर निर्भर रहें कि उनको करना चाहिए और मुझे केवल फिर वातावरण का फायदा उठाना चाहिए, मतलब उसका सुविधा स्वीकार करना चाहिए, नहीं मुझे भी करना चाहिए। यदि हर एक व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि मुझे वातावरण को निर्माण करना है ऐसे, तो कोई समस्या नहीं। तो आगे एक दो श्लोक और बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी फिर महाप्रभु शिक्षा शुरू करते हैं, 136 श्लोक। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसे लक्षण,
प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसे लक्षण,
सूत्र रूपे कही विस्तार न जाए वर्णन,
सूत्र रूपे कही विस्तार न जाए वर्णन।
प्रभु कहे अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुन रूप, अरे सुनो रूप, भक्ति रसेर लक्षण, भक्ति रस के लक्षण जो हैं, सूत्र रूपे कही, केवल सूत्र रूप में मैं कहने जा रहा हूं। क्यों? विस्तार ना जाए वर्णन, विस्तार में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आगे बता रहे, पारा पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु,
पारा पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु,
तुम्हें चा खाई ते तार कही एक बिंदु,
तुम्हें चा खाई ते तार कही एक बिंदु।
पार, पारा पार शून्य, पार और अपार शून्य, पार मतलब एक तट, अपार मतलब दूसरा तट। जब दूसरे तट की कोई सीमा नहीं होती है, दोनों तटों में जब इतना अंतर होता है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो वो समुद्र बहुत बड़ा है ऐसे मानना चाहिए, जैसे समुद्र में होता है। नदी में कम से कम हम दोनों तटों को देख सकते हैं, एक तट में खड़े होकर हम सामने वाले तट को देख सकते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसे नदियां होती हैं इतनी चौड़े होते हैं, 4 किलोमीटर चौड़े, 4 किलोमीटर बहुत होता है नदी की चौड़ाई, फिर भी हम देख तो सकते हैं, लेकिन समुद्र का दूसरा तट हम देख सकते हैं? आप समझो आप सब कारवार से आए हो कोई, है ना, तो कारवार में खड़े रख के आप दुबई देख सकते हैं? समुद्र के उस पार है, नहीं देख सकते, बहुत दूर है। तो ये समुद्र ऐसा, और इतना ही नहीं, ये भक्ति रस सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र, ये इतना विशाल है, गंभीर, और गंभीर भी है साथ साथ, बहुत गंभीर है, गहरा है। तुम्हारे चाखाई ते तारक कही एक बिंदु, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, ये भक्ति रस के सागर की, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, केवल तुम्हें इस सागर के एक बूंद को मैं चखा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये समुद्र बहुत विशाल है, इसका पान नहीं कर पाओगे, एक बूंद पाकर ही संतुष्ट हो जाओगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु मतलब
सागर,
सागर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी, जिसका नाम है
बिंदु,
भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ये एक बिंदु हमारे लिए बहुत है, एक बूंद इस बड़े सागर से हम पान करेंगे तो हमको बहुत मिल जाएगा। तो इसके बाद फिर वो अपने विषय शुरू करते हैं, इसके हम अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट के लिए, क्या रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट पानी, ठीक है, 5 मिनट की छुट्टी काश लेते हैं, और पृथ्वी के 5 मिनट के बाद आप आइए वापस, स्वर्गलोक के 5 मिनट के बाद नहीं। हरे कृष्ण।